Om Shiva, 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 Shiva. अनंत करुणा के सागर परमपिता परमात्मा की अहेतु की कृपा से इष्ट स्वरूप गुरुजनों के शुभ संकल्प से पुण्याशीर्वाद से भगवान की दिव्य विभूति इस पवित्र सागर तट पर जगदीश्वर भोलेनाथ बाबुलनाथ जी के पावन सानिध्य में जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य काल में जन्माष्टमी के पवित्र वातावरण का आनंद लेते हुए हम सब साधक वृंद विगत कुछ दिनों से आचार्य शंकर के द्वारा विरचित धन्याष्टकम स्तोत्र के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र करने की, अपने जीवन को सफल करने की, अपने जीवन को धन्य करने की चेष्टा कर रहे हैं। हम उस अनुभूति में डूबना चाह रहे हैं जिस अनुभूति में हमारे गुरु लोग डूबे हैं। आज की ब्रह्माष्टमी माला का एक दो श्लोक देखिए। अद्य मे सफलम जन्म, अद्य मे सफलो गुरु, अद्य मे सफलो योग, अद्य ब्रह्मास्मि सर्वथा। ज्ञातव्यम अधुना ज्ञातम, दृष्टम द्रष्टव्यम अद्भुतम, धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि, ज्ञातम ब्रह्मास्मि महद्भुतम। धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि। हमारे गुरुजन अपनी अनुभूति को बता रहे, मैं धन्य हूं, मैं कृतकृत्य हूं। किस उपलब्धि ने इन महापुरुषों को यहां तक पहुंचाया? ताल ठोक करके कह रहे हैं, धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि, मेरा जन्म भी सफल है, मेरे गुरुदेव भी सफल है, मेरी साधना भी सफल है। जिस उपलब्धि के आधार पर महापुरुष इस अनुभूति के स्तर को स्पर्श करते हैं कि मैं धन्य हूं, मैं कृतकृत्य हूं, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी साधना सफल हो गई, मेरे गुरुवर सफल हो गए, उसी अनुभूति को हम समझने की चेष्टा कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समझ का अब पीक पॉइंट आ रहा है। पंचम श्लोक जिसका हम लोग मनन कर रहे हैं, त्यक्त्वा एषणात्रयम् अवेक्षित मोक्ष मार्गा, वेक्षामृतेन परिकल्पित देह यात्रा, ज्योति परात्परतरम् हृदयावलोकयन् परमात्म संज्ञम् धन्या द्विजारहसि हृदयावलोकयन्ति। ये पद्धति है धन्य होने की, ये पद्धति है सफल होने की, यह पद्धति है कृतकृत्य होने की। कहां से गुरु लोग प्रारंभ करा रहे हैं? त्यक्त्वा एषणात्रयम् अवेक्षित मोक्ष मार्गाः। हम लोग जैसे घर चेंज करते हैं ना, बहुत बार जब रेंट का घर होता है, किराए का घर होता है, तो बहुत बार हमें चेंज करना पड़ता है, एक मकान बदल करके दूसरे मकान में जाना पड़ता है, अपने आप को ट्रांसफर करना पड़ता है पूरे सामान के साथ। ऐसे ही साधना के क्षेत्र में भी साधक को एक दो बार ट्रांसफर करना पड़ता है। अभी हमारा जीवन एषणात्रय के स्तर पर हम जी रहे हैं, यहां से अब हमारा ट्रांसफर होना है और हमको ट्रांसफर होकर के साधना त्रय में चले जाना है। ये ऐसा ही है जैसे समझिए कोई बहुत दूर नवी मुंबई वासी नेरुल उधर रह रहा है, ट्रांसफर होकर के बाबुलनाथ जी के किनारे इधर आ गया, समुद्र के किनारे बाबुलनाथ जी के पास में, बड़ी सुविधा है यहां पर, बड़ी प्राइम लोकेशन है, परम पवित्र भगवान समुद्र का दर्शन प्रतिदिन, भोलेनाथ बाबुलनाथ जी महादेव का दर्शन, पीछे भगवान कृष्ण नटवर नागर, इधर अध्यात्म सत्संग सुनने के लिए, तो ट्रांसफर होकर के आप इधर आ गए, बड़े प्राइम लोकेशन में आ गए आप। ऐसे ही साधक को अपने आप को ट्रांसफर करके एषणात्रय से उसको ट्रांसफर करना है साधनात्रय में। ये प्रथम लाइन में ये चीज बताई गई, त्यक्त्वा एषणात्रयम् अवेक्षित मोक्ष मार्ग। मोक्ष का जो मार्ग है, मोक्ष का मार्ग क्या है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन, यह है साधनात्रय। और इधर है हमारी एषणात्रय, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा और लोकेष्णा। यहां से हम लोगों को ट्रांसफर करना है धीरे धीरे, और ये जो ट्रांसफर है ना, ये बड़ा स्मूथली होना चाहिए, बड़ा इजीली होना चाहिए। स्मूथली यदि नहीं होगा, एकदम सहजता से यदि नहीं होगा, तो ये ट्रांसफर जो है ये ठीक ठाक नहीं होगा। इसलिए बड़े विवेक से, बड़ी समझ से, बड़े धैर्य से और बड़ी सावधानी से हमको एषणात्रय से उठा करके अपने आप को साधनात्रय की तरफ ले जाना है। बहुत जबरदस्ती से ये संभव नहीं है। और जो लोग बहुत जबरदस्ती करते हैं अपने साथ अविवेक पूर्ण, उन लोगों का जीवन ज्यादा कष्टमय हो जाता है। एक प्रेशर तो साधक को थोड़ा देना पड़ता है अपने ऊपर पॉजिटिव तरफ ले जाने के लिए, परंतु आप अविवेक पूर्ण अति नहीं कर सकते। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा जो प्रोसेस है, ये बड़ा विवेक पूर्ण होना चाहिए, बड़ा वैज्ञानिक होना चाहिए, बड़ा सदा हुआ होना चाहिए और बड़ा सहज होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और वो टिकाऊ होता है, वो मजबूत होता है। और जो बहुत खींचातानी करके कर देते हैं, तो करना चाहते हैं अथवा कसम कस करते हैं, वो बहुत स्थायी चीज नहीं होती है, बहुत टिकाऊ चीज नहीं होती है। इसलिए जो एषणात्रय से ऊपर उठ करके साधनात्रय में जाना है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें बहुत प्रकार की सावधानी साधकों को रखनी पड़ती है। पहले हम थोड़ा अपने एषणाओं का विश्लेषण करें कि आखिर हमको इसमें रस क्यों है, साधना में रस क्यों नहीं है, इसको पहले थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है इसका विश्लेषण करेंगे। एषणा त्रय में तीन एषणाएं हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। पुत्रेषणा में हम लोगों को इतना रस क्यों आता है? यहां पुत्रेषणा का मतलब केवल पुत्र से नहीं लेना, संतति, संतान, पुत्र माने संतान, पुत्र हो या पुत्री हो अथवा शिष्य इत्यादि हो, जो भी हो, संतान के प्रति जो एक हमारा आकर्षण है, इसको शास्त्र ने पुत्रेषणा के नाम से बताया। इसमें हम लोगों को इतना रस क्यों लगता है? इसके प्रति मेरी समझ ऐसी है कि दो तीन कारण मुख्य है, तीन चीजों के कारण हमें इसमें रस लगता है, और तीनों ही चीज है तो आत्मा से ही जुड़ी हुई है, परंतु हमारी समझ जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए हमारे बंधन का कारण बन जाता है। पुत्र के प्रति अथवा संतान के प्रति जो आकर्षण का प्रथम कारण है, हम लोग बड़ा स्थूल रूप से समझने की कोशिश करते हैं कि संतान होगा तो शायद बाद में हमारी सेवा करेगा, इसलिए हम आकर्षण करते हैं। असल में यह आकर्षण का मूल कारण नहीं है। बहुत सजग जो माता पिता होते हैं वो तो अपने से ही समर्थी होते, तो वो ऐसी आशा नहीं रखते हैं, परंतु आकर्षण के कुछ दूसरे केंद्र हैं, वहां हमारा ध्यान नहीं जाता, उधर हमारा थोड़ा फोकस होना चाहिए। प्रथम चीज है संतान के प्रति आकर्षण होने का, शास्त्र ने बताया आत्मा वै जायते पुत्रः। ये पुत्र क्या वस्तु है? कहा कि व्यक्ति स्वयं पुत्र के रूप में अथवा संतान के रूप में प्रकट होता है। आत्मा वही जायते पुत्रः, आत्मा स्वयं अपने संतान के रूप में, माने व्यक्ति स्वयं अपने संतान के रूप में, व्यक्ति स्वयं अपना एक दूसरा रूप लेकर के, प्रतिनिधि रूप लेकर के संतान में प्रकट हो जाता है। इससे क्या होता है? इससे उस आत्मा को बड़ा संतोष मिलता है, बड़ा रस मिलता है, क्योंकि हमारे अपना जो आत्मिक स्वरूप है, माने जो असली स्वरूप है, वो स्वरूप है शाश्वत। वो स्वरूप क्या है? शाश्वत माने सदा बना रहने वाला है, और हमारा जो ये टेम्परेरी स्वरूप है ये है अशाश्वत। इसलिए इससे हम टोटली सेटिस्फाइड नहीं है। हमारे मन की और हमारे दिल की इच्छा है कि मैं हमेशा बना रहूं, कभी मैं ना हूं, ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो, और हमारी जो इनर मोस्ट डिमांड है इसको पूरा करने का काम करती है कुछ हद तक हमारी संतान, क्योंकि हमारा एक दूसरा रूप हमारे सामने प्रकट हुआ है। तो हम लोगों को लगता है कि हां, मेरे अस्तित्व का थोड़ा विस्तार हुआ। असल में हम पुत्र से जो प्यार करते हैं, पुत्र से जो प्रेम करते हैं, संतान से जो प्रेम करते हैं, इस प्रेम की मूल इच्छा है अपने अस्तित्व का विस्तार। आत्मा वी जायते पुत्रः। इसलिए पुत्र सुख को सांसारिक सुखों में एक उत्कृष्ट सुख माना गया। पुत्र सुख माने संतान सुख। या पुत्र शब्द को आप थोड़ा कैटेगराइज मत करना, केवल बेटे के लिए उसको कैटेगराइज मत करना, संतान के लिए ये यहां पर इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये जो एक हमारी इनर मोस्ट डिमांड है कि मैं विस्तृत हो जाऊं, मैं फैल जाऊं, मैं बना रहूं, मेरे अस्तित्व के ऊपर कभी कोई आघात न आए, इस हमारी डिमांड को ये चीज पूरी करती है। इसलिए हमारा बड़ा सहज लगाव होता है। इसलिए आप देख देना,
जो संतान माँ बाप की सेवा भी नहीं करते, असल में जो संतान भी नहीं है, कुशंता नहीं है एक शब्द में, एक अर्थ में, फिर भी माँ बाप की आसक्ति उनके प्रति, राग उनके प्रति देखा जाता है। तो यदि केवल इतनी ही उनका राग का कारण होता कि हमें सुख मिलेगा, तो वो तो मिल नहीं रहा है, परंतु राग बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि राग का कारण कुछ और दूसरा है। ये जो हमारे अस्तित्व को विस्तार देता है, विस्तार मिलता है संतति के माध्यम से, इसलिए ये चीज हमें प्यारी लगती है। और इसलिए ये इतनी प्यारी लगती है कि इसको हम जीवन का एक केंद्र बिंदु बना देते हैं। ये एक कारण है पुत्रेष्णा के प्रति, माने पुत्रों के प्रति, संतान के प्रति, प्रेम के प्रति। और ये कोई खराब चीज नहीं है, शास्त्र ने इसको खराब नहीं कहा है। इसमें प्रॉब्लम कहां है उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। दूसरा एक कारण और है, हम क्यों अपने संतान से प्रेम करते हैं, ये थोड़ा पुत्र रिलेटेड है, माने बेटे से रिलेटेड है। तो पहले तो संतान से, दोनों से प्रेम क्यों करते, इसका एक कॉमन फैक्ट, हमने कॉमन ग्राउंड एक खोजने की कोशिश की। दूसरा ये होता है, माना जाता है प्रत्येक प्राणी मनुष्य के रूप में जब पैदा होता है तो वो तीन ऋणों से ऋणी होता है। उसके ऊपर तीन ऋण होते हैं, क्या क्या? पितृऋण तो एक हुआ, पितृऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो इसमें एक बड़ा और प्रबल ऋण है हम लोगों के ऊपर, पितृ ऋण। इसका शास्त्र में दो प्रकार से विचार आया, इस पॉइंट को भी थोड़ा सामने रख दूं, कंफ्यूजन न हो। पंक्ति है जायमानो वही नर त्रिवी ऋणी वीर युक्तम जायते, ऐसी कुछ पंक्ति है। जो पैदा होता है वो तीन ऋणों से युक्त ही पैदा होता है। तो फिर ये विचार आया कि जो सन्यासी इत्यादि हो जाएंगे उनको तो ये एक ऋण उतारने का चांस नहीं मिलेगा, तो उनको मुक्ति होगी कि नहीं होगी, ये प्रश्न आया। तो इस चीज का फिर ये अर्थ निकल करके आया, सार ये निकला कि जब गृहस्थ बनता है तब वो तीन ऋणों से युक्त होता है, और जिसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया वो इस प्रकार के तीन ऋणों से बंधा हुआ नहीं है, कम से कम उसका पितृ ऋण इस प्रकार से उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो यदि आप गृहस्थ बन गए हैं, आप सदगृहस्थ बने हुए हैं, तो पितृ ऋण को पूरा करने का दायित्व और जिम्मेदारी आपके कंधे पर आ गई। और ये जो ऋण है ये आप पैसा संपत्ति देकर के चुका नहीं सकते, एक बड़ा बोझ और बड़ा कर्ज है। ये आप कब चुका सकते हैं? जब आप संतान पैदा करेंगे। ये आपके ऋण आपके सिर से कब उतरेगा? जब आप संतान पैदा करेंगे। तो आपने एक संतान पैदा की तो आपके एक बड़ा कर्जा उतर गया। तो संतान पैदा करने से ही जब आपका सिर का कर्जा उतरा तो आपको बड़ा रिलैक्स फील होता है। ये जो इसका जन्म है, ये जन्म लेना ही आपको कर्जे से मुक्त कर रहा है। आप पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। चीजें थोड़ी और दूर तक जाती है। जन्म आप दें, उसको सुयोग्य संतान बनाएं, और वो योग्य संतान बने, और योग्य संतान जब आप समाज को अर्पित कर देते हैं, समाज को समर्पित कर देते हैं, तो आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कि हमारे दिल में आकर्षण पैदा होना बड़ा स्वाभाविक ही है कि इनको जन्म देने मात्र से भी एक, हम तो अब इतना विचार कर भी नहीं पाते हैं, और पितृ ऋण क्या होता है, क्यों होता है, ये समझ भी नहीं पाते। परंतु जो बड़े शास्त्रीय लोग थे, जो गहरी शास्त्र निष्ठा से गृहस्थ जीवन जीते थे, उनके दिमाग में तो ये चीज एकदम क्लियर थी कि ये ऋण मेरे ऊपर है, और जब तक मैं संतान को जन्म नहीं दूंगा तब तक ये ऋण मेरे सिर से उतरने वाला नहीं है। तो वो तो उसके आभारी होते थे कि वाह बेटा तू आ गया, मुझे ऋण मुक्त कर दिया। दूसरा ये एक बड़ा कारण होता था, वो उसके साथ बड़े आत्मीयता से जुड़ जाते हैं और उसके प्रति एक सद्भावना का भाव होता है, एक कृतज्ञता का भाव होता है अपने संतान के प्रति, एक सजग मां बाप का कि तुम आए और मैं पितृ ऋण से मुक्त हुआ। और फिर उसको ऐसा योग्य बनाने के लिए जितनी तपस्या करनी पड़ती है उस तपस्या के लिए अपने आप को बड़े सहर्ष तैयार कर देते हैं। मुझे लगता है कि ये आसक्ति का एक दूसरा बड़ा कारण है, उनको लगता है कि हां इसके कारण हमारा ऋण मुक्त हुआ। तो दो पॉइंट हो गए, एक पॉइंट जिसके कारण हमको लगता है कि हमारे अस्तित्व का विस्तार हुआ है, और दूसरा पॉइंट जिसके कारण हमें लगता है कि हम अपने ऋण से मुक्त हुए हैं। और तीसरा कारण है पुमनाम नरकात तारणात पुत्र, ये एक शास्त्रीय वचन और है। हमारे शास्त्रकारों ने ऐसा माना है कि पुम नाम नरक से पुत्र अपने पितरों का त्राण करता है, पुम नाम नरक से पुत्र के कारण संतान के कारण उसका त्राण होता है। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो मिस्टिसिज्म से बड़ा भरा हुआ है, रहस्यमयता से भरा हुआ है। जीवन के कुछ ऐसे रहस्य हैं, क्योंकि एक तो हम पुनर्जन्म में बहुत गहराई से विश्वास करते हैं और एक बड़ी वैज्ञानिक चीज है, इसको विश्वास किए बिना जीवन के पूरे तथ्यों का व्याख्यान हो नहीं सकता। इसलिए सनातन धर्म बड़ी गहराई से पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, और पुनर्जन्म का मतलब हुआ हमारे आत्मा का जो स्तर है शरीर के पूर्व और शरीर के उत्तर दोनों कालों में सुस्थिर बना हुआ है। इसलिए इसके कुछ सुख दुख का संबंध हमारे इस वर्तमान जीवन से संबंधित होता है। एक हद तक एडजस्टमेंट प्लस माइनस हमारी उत्तर पीढ़ी हमारे लिए करती है, ये साइंटिफिक है, ये संभव है, ये किया जाता है, ये होता है। इसलिए पुत्र के द्वारा जो ऊर्ध्वदेहिक कर्म बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वदेहिक कर्म, ऊर्ध्वदेहिक कर्म का मतलब होता है इस देह को छोड़ करके चले जाने के बाद जो कर्म करने पड़ते हैं वो पुत्र ही कर पाता है, पुत्र ही करता है, तो हमारी संतान ही करती है। जैसे श्राद्ध आदि का कर्म है, अंत्येष्टि इत्यादि का कर्म है, तो ये संतान के द्वारा ही करना संभव होता है। तो वो ऊर्ध्वदेहिक कर्म करके हमारे उत्तर जीवन में अपनी कुछ भूमिका निर्धारित करता है। इसके लिए उसके प्रति बड़ा सहज आकर्षण होता है कि भैया ये तो बहुत अच्छी चीज है, बड़ी काम की चीज है, हमारा यहां से चले जाने के बाद भी उपकार करता रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये तीन कॉमन फैक्टर है जो हमारे भीतर पुत्रेष्णा का एक प्रबल आवेग पैदा करते हैं, एक प्रबल आकर्षण पैदा करते हैं। एक तो संतान के माध्यम से, प्रथम पॉइंट, तीन पॉइंट में दोबारा गिना दे रहा हूं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम पॉइंट यह है कि संतान के माध्यम से हम अपने अस्तित्व का विस्तार अनुभव करते हैं। दूसरा, संतान के माध्यम से हम पितृ ऋण से मुक्ति का अनुभव करते हैं। और तीसरा, संतान के भीतर हम अपने मुक्ति का बीज देखते हैं, अपने कल्याण का बीज देखते हैं। इसलिए ये चीज जो है हमें आकर्षित करती है और जिंदगी भर आप देखना हमारे जीवन का एक बड़ा प्रबल केंद्र है संतान। इसको पुत्रेष्णा शब्द से हमारे शास्त्रों ने बताया। अब आप कहेंगे कि इसमें खराबी क्या है, इसमें छोड़ने लायक क्या है, तीनों तो अच्छी चीज है। पुत्र के द्वारा हम अपने अस्तित्व के विस्तार को अनुभव करते, इसमें कुछ गलत है क्या? ये कोई युक्ति विरुद्ध है कि शास्त्र विरुद्ध है, माने किससे विरुद्ध है? आप क्यों छोड़ना चाहते हो, किससे विरोध है इसका? ये तो फैक्ट है। अच्छा, पुत्र के द्वारा ऋण से मुक्ति हुई जाती है, पितृ ऋण से मुक्ति हुआ जाता है, इसमें तो शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र का तो विरोध नहीं है। और पुत्र जो है हमारे उत्तर जीवन में भागीदारी निभाता है, इसमें भी शास्त्र ही प्रमाण है, तो क्यों छोड़ना चाहते हैं हम लोग? अथवा गुरुजनों ने छोड़ने के लिए फिर उपदेश क्यों किया? इसका तो हमको गहराई से मनन करना पड़ेगा। इसलिए मैं बता रहा था ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ऐसा त्रय से साधना त्रय में जाना, ये बड़ा विवेकपूर्ण काम है। बड़े विवेक से करेंगे तभी घटेगा, नहीं तो घटेगा ही नहीं। ये इन युक्तियों से जब विचार करते तो हमको तो लगता है कि त्यागने की तो कोई यहां जरूरत महसूस नहीं होती है। इसलिए हम बहुत बार सुनते हैं भैया ऐसा का त्याग करो, ऐसा का त्याग करो, ऐसा का त्याग करो, पर हमारा मन तो तैयार होता नहीं है, क्योंकि हम तो उसको ठीक से काउंसलिंग कर नहीं पाए, हम तो उसको कन्विंस कर नहीं पाए, हम तो उसको समझा नहीं पाए कि क्यों त्यागना जरूरी है। और इन युक्तियों से तो लगता नहीं है कि त्यागना चाहिए। जो युक्तियां अभी हमने रखी है कि इसके कारण पुत्रेष्णा जन्म लेती है, पुत्र के प्रति अनुराग जन्म लेता है, संतान के प्रति अनुराग जन्म लेता है, तो फिर हम क्यों त्यागे? ये हमारा मन ही हमसे प्रश्न पूछता है, फिर हम क्यों त्यागे? क्या जरूरी है, आवश्यकता कहां है? अच्छा, तीनों ऐष्णाओं का चर्चा कर ले, फिर क्यों आवश्यकता है इसके ऊपर विचार करेंगे। आप लोग तो चुपचाप है, कुछ कोई बोल ही नहीं रहा, हम क्या करें? क्या जरूरत है, आप कोई मत नहीं दे रहे हो अपना, आपने सब जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर डाल दी। बोले जो बोलना है आप ही बोलिए, आपने हमको प्रतिनिधि बना दिया अपना भी। क्यों त्यागे हम फिर इस पुत्रेष्णा का त्याग क्यों करें? क्या जरूरी है? जो हमारे अस्तित्व को विस्तार दे रहा है, जो हमें ऋण से मुक्त कर रहा है, और यहां तक कि जो हमारे उत्तर जीवन को भी मेंटेन कर रहा है, इतनी अच्छी चीज को आप त्यागने की बात क्यों बता रहे भैया? हमारे से क्या दुश्मनी है आपकी? हमारे गुरु लोगों की क्या दुश्मनी हम लोगों से जो इतनी अच्छी चीज को छोड़ने के लिए बता रहे? पुत्रेष्णा छोड़ो, पुत्रेष्णा छोड़ो, पुत्रेष्णा छोड़ो। मोक्ष तो मिलेगा बता तो रहे हैं, पुम नाम नरका त्रायते, इसलिए पुत्र इसीलिए है कि वो पुम नाम नरक से त्राण करे। मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा भैया? आपको जन्म लेके ही पितृ ऋण से मुक्त कर दे रहा है, ऐसा कर्जा जो आप पूरा संसार देकर के नहीं चुका सकते हो। आप अपना घर बेच दीजिए, गाड़ी बेच दीजिए, बिजनेस बेच दीजिए, पूरा आप दान कर दीजिए, आप पितृ ऋण को नहीं चुका सकते हो जब तक संतान पैदा नहीं करेंगे। तो ऐसा एक ऋण है जो आप संसार की कोई वस्तु देकर के नहीं चुका सकते हो, उसने जन्म लेकर के चुका दिया, फिर आप त्याग करने के लिए तैयार बैठे हो, क्या बात है भैया? उस गड़बड़ नहीं लगता है, हैं? बच्ची नहीं कर सकती, वो तो अलग विचार है, उसके ऊपर तो हम नहीं कर रहे, पर ये बच्ची बच्चा सबको त्यागने की बात क्यों हो रही है? मैं तो ये पूछ रहा हूं, जरूरी क्या है? और ये मैं नहीं पूछता हूं, हमारा मन जो है वो अपने आप को पूछता है, प्रत्येक व्यक्ति को पूछ रहा है। मैं आपको पूछ रहा हूं, माने एक पॉइंट पर जाकर के आपका मन ये आपको पूछेगा, और हम ऊपर से लीपापोती करते करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए। अरे भैया मन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, क्यों करना चाहिए? लीपापोती से तो चलेगा नहीं, मन मानेगा नहीं, मन को एकदम सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। वासना तो एक युक्ति है ही है। मन पूछता है हम लोगों को, बड़े प्रबलता से पूछता है, और पूछता क्या है बल्कि हिलने नहीं देता है। जानते हैं कि छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना चाहिए ये भी जानते हैं, फिर भी मन तैयार नहीं होता है। क्यों नहीं मिलता है? पुत्र के आपके ऊपर डंडा लेके बैठा है कि वासना नष्ट मत करो, पुत्र ने आपके वासनाओं का क्या किया? आप अपना वासना नष्ट करिए, बराबर है? तो आपको समर्थन मिल गया, अब हम क्या करें भैया? तो ये जो तीन चीजें जो हमने रखी, जो हमारे आसक्ति के मुख्य कारण है, माने जिसके कारण से हम आसक्त होते हैं, हमारे अस्तित्व का विस्तार करता है, पुत्र हो अथवा संतान हो, उससे हमको एक अनुभूति होती है, तो भी अस्तित्व का विस्तार तो होता ही है, रहता तो है, आपका नाम तो रखता ही है। अस्तित्व तो रहता ही है, अपना अस्तित्व है मेरा, ये तो अनुभूति रहती है, और वो ये अस्तित्व है माने टेम्परेरी नहीं, वो आगे 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 तक रहेगा मेरा। परंतु असल में हम जिस प्रकार के अस्तित्व के विस्तार की हमारी जो असलियत है, वो विस्तार इससे संभव नहीं है। हमारा अपना स्वरूप है देश से, काल से, वस्तु से अपरिचिन्न, और उस अपरिचिन्न रूप में हमें पहुंचना है, उस अपरिचिन्न में पहुंचे बिना हमारी पूर्णता नहीं हो सकती है। इसलिए एक स्तर पर जाकर के ये जो विस्तार है, इससे मन सेटिस्फाइड नहीं होगा, मन सेटिस्फाइड नहीं होगा, इसलिए आपने उत्तर नहीं दिया। तो ये जो हमारे अनंत विस्तार की संभावनाएं हैं, और अनंत विस्तार में जाकर के ही हम संतुष्ट हो सकते हैं, इसलिए केवल यहां संतुष्ट होकर के हम बैठ गए कि भैया हमारे अस्तित्व का विस्तार हो गया, तो हम कंप्लीट नहीं होते हैं। इसलिए एक हद तक तो मन स्वीकार करता है कि हां मेरे अस्तित्व का विस्तार तो हुआ, परंतु वहां जाकर के फिर मन प्रश्न करने लगता है कि ना, मैं जितना विस्तृत होना चाहता हूं, देश से, काल से, वस्तु से, किसी से भी मेरी परिच्छेद ना रहे। ये जो परिच्छिन्नता का एक कांटा हमारे दिल के भीतर गड़ा हुआ है, और इसके कारण हमें जो कष्ट है, वो पूरा पूरा ये पुत्र से निकलता नहीं है, संतान से निकलता नहीं है। इसलिए संतान से हमारी कोई शत्रुता नहीं है, संतान से हमारा कोई वैर नहीं है, शास्त्र का कोई वैर नहीं है, परंतु साधक एक स्तर पर जाकर के इस निर्णय पर पहुंचता है कि इस विस्तार से केवल मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए फिर वो अपने विस्तार का एक दूसरा मार्ग अपनाता है। देखो, संसार को त्यागना सिखाना ये वेदांत का उद्देश्य नहीं है, ये वेदांत का उपदेश नहीं, और वेदांत का कर्तव्य नहीं है कि आपको ये सिखाए कि आप संसार का त्याग करो। वेदांत का कर्तव्य और वेदांत की जिम्मेदारी केवल इतनी है, आप सच्चित आनंद स्वरूप हो, आप अजर अमर अविनाशी सत्ता हो, आप जन्म मृत्यु से परे हो, संसार की किसी भी उपलब्धि से आपका अणुमात्र विकास नहीं होने वाला है असली स्वरूप का, और संसार के तथाकथित हजारों करोड़ों अरबों के नुकसान से आपका अणुमात्र बिगड़ने वाला नहीं है। इस परिस्थिति में, इस अनुभूति में, इस सच्चाई में आपको प्रतिष्ठित कर देना, ये वेदांत का कर्तव्य है। और इसके अलावा आप जहां पर भी जाकर के अपने आप को कृतार्थ महसूस करने लगते हो, वहां आकर के वेदांत आपको धक्का देता है, ए उठ उठ उठ, ए आगे बढ़, उठ उठ, आपको बैठने नहीं देता है। तो सामान्य स्तर पर व्यक्ति जाकर के संतान में बड़ा संतुष्ट होकर के बैठ जाता है, बड़ा अच्छा हुआ, अपना विस्तार भी हो गया, अपना ऋण भी उतर गया, अपने मुक्ति का साधन भी बन गया, अब इससे बढ़िया और क्या चाहिए। तो वेदांत कहेगा कि ये एक सीमित सच्चाई है, ये टोटल रियलिटी नहीं है, ये टोटल रियलिटी नहीं है। तुम्हारे अपने आत्मा का जीव जो स्वरूप है, उस पुत्र प्राप्ति से तुम्हारा आप पूरा होने वाला नहीं है। अथवा पुत्र के लालन पालन में, पोषण में, उनके संवर्धन में लगे रहने से पूरा होने वाला नहीं है। इसके लिए तुम्हें दूसरा रास्ता कोई अपनाना पड़ेगा। ये इतना भर बस वेदांत का उपदेश है। आपको छोड़ना है कि पकड़ के रखना, इसमें वेदांत को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना आप पकड़ करके भी यदि आप आत्म तत्व को प्राप्त कर ले तो छूट जाए, वो अलग बात है। महाराज जनक ने कुछ भी त्याग नहीं किया। बहुत है, बहुत सारे हमारे इस समाज में जनक है, वशिष्ठ है, हमारे जितने भी ऋषि, आप सप्त ऋषियों का पूरा उदाहरण ले लीजिए, हैं अभी रामकृष्ण परमहंस का तो अभी रिसेंट ही है, रामकृष्ण परमहंस तो बहुत साल नहीं हुए। रमण महर्षि तो गृहस्थ नहीं थे, एक गृहस्थ के लिए पूछे, माने छोड़ा कुछ नहीं और उनका काम हो गया, ऐसे एग्जाम्पल पूछ रहे। रमण तो विरक्त सन्यासी थे, उन्होंने शादी नहीं की उसके बाद में। ऐसे हैं, आपको एग्जाम्पल बहुत मिलेंगे, पर्याप्त मिलेंगे। हाँ, वो थोड़ा पौराणिक है, थे ऐसे बहुत महापुरुष हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेदांत आपके जीवन में कोई कंट्रडिक्शन पैदा नहीं करना चाहता, कोई टकराव पैदा नहीं करना चाहता है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है कि हम पहुंचना कहां चाहते हैं और उसकी रियलिटी क्या है। क्या छूट जाता है, क्या पकड़ लेते हैं, उसको उससे वेदांत को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारी चेतना यदि यहीं जकड़ी है और यहां जाकर के हम संतुष्ट हो गए कि भैया मैं तो कृतकृत्य हो गया, तब वेदांत कहेगा कि नहीं भैया, तुम भूल कर रहे हो, तुम भूल कर रहे हो। बस इतना सा वेदांत का काम है कि तुम भूल कर रहे हो। इसलिए वेदांत एक हायर स्टेज देता है, एक विकल्प देता है, अपने को विस्तार में कैसे ले जाओगे। तो वही अवेक्षित मोक्ष मार्ग, फिर श्रवण मनन और निधिध्यासन, ये पथ उसके लिए वेदांत खोलता है। तो ये वो चीज है जिसके प्रति हमारे भीतर संतान के प्रति बड़ा आकर्षण पैदा होता है। और ये केवल मनुष्य में ही होता है, ऐसी बात नहीं है, प्राणी मात्र में ये आकर्षण दिखाई देता है। तो मनुष्य तो हो सकता है थोड़ा कैलकुलेट करके आकर्षण पैदा करे कि मेरी सेवा करेगा, मेरे लिए कमाएगा, ये करेगा, परंतु गाय क्या इतना कैलकुलेट करती है, हिरण क्या इतना कैलकुलेट करता है, मछली क्या इतना कैलकुलेट करती है? तो उसका सहज आकर्षण क्यों होता है? क्योंकि उसको एक सहज फीलिंग है कि मेरे अस्तित्व का विस्तार, वो इंस्टिंक्ट है, और ये फीलिंग इंस्टिंक्ट है कि मेरे अस्तित्व का विस्तार हो रहा है। परंतु ये विस्तार बड़ा लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। इसी प्रकार वित्त हमें आकर्षित करता है, ये भी हमारे अस्तित्व में कुछ जोड़ता है, हमारे अहम को विस्तृत करता है, फैलाता है। आप फकीर हैं, कुछ नहीं है, तो हमारा जो अहम है वो केवल शरीर तक सीमित है, मैं इसका मालिक हूं, यहां मेरी अबाध गति है, इस शरीर को मैं जैसे चाहूं ऐसे यूज कर सकता हूं, किसी का कंट्रोल नहीं है, मेरा है। परंतु आप दूसरे के मकान में किराए से रह रहे हैं, वहां पूरे फ्री नहीं है, एक कमरे के भीतर आप जो चाहे वो कर सकते हो, वो भी बड़ा लिमिटेड। परंतु आपने एक 5 तला मकान बना दिया, आपका मालिकाना हक है, आपने अपने पैसों से बनाया, अब आपके अहम का तो हमारे अहम का विस्तार हो गया ये पांच तला तक। अब मुझे लगता है कि इस पांच तला में मैं पूरा फ्री हूं, इसको जैसे चाहूं ऐसा यूज कर सकता हूं, इसमें किसी का मेरे ऊपर अंकुश नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, मुझे किसी की दो बात सुननी नहीं पड़ेगी। तो हमें ये फील होता है कि मेरे अस्तित्व का थोड़ा विस्तार हो गया, मेरी सीमा थोड़ी टूटी, केवल शरीर में ही बंधा हुआ पड़ा था, इसको मैं झाऊं जैसा यूज कर सकता था, अब मुझे थोड़ा और आकाश मिला, थोड़ा और स्पेस मिला, थोड़ी और जगह मिली, अब मैं इतनी चीजों को झाऊं जैसा यूज कर सकता हूं। ऐसा थोड़ा और जब विस्तार होता है तो इससे हमको रस मिलता है। ये जो हमारे अस्तित्व का एक विकास होता है धीरे धीरे, हमारे आधिपत्य का विकास होता है, इसलिए वित्त हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। हम ज्यादा से ज्यादा वित्त को प्राप्त करके ज्यादा से ज्यादा दूर तक अपने अस्तित्व को फैलाना चाहते हैं, ताकि मैं ज्यादा विकसित हो जाऊं, ज्यादा फैल जाऊं। परंतु इसकी भी एक सीमा है, असीमित विस्तार हमारे अस्तित्व को ये नहीं दे सकता। और तीसरी चीज है जिसको लोकेशना कहते हैं, नाम यश, जिसको हम लोग यश के रूप में देखते हैं, कीर्ति के रूप में देखते हैं, ये भी किसी ना किसी ढंग से हमारे अस्तित्व को विस्तार देता है, इसलिए इसके प्रति हमारा आकर्षण पैदा होता है। तो हम भीतर से उसको ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं पता नहीं है, हम तो उसको अपना साधन मानते हैं। ये तो साधक की दृष्टि है कि प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, हमारे लिए तो बहुत दूर की चीज है, क्योंकि हमारे जीवन का तो केंद्र बिंदु यही बना हुआ है। ये तो सच्चाई है, आप जो बता रहे हैं प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा तो एकदम परफेक्ट आप बोल रहे हैं, पर तो हमारी समस्या क्या है? हम तो थोड़े से नाम के लिए और नाम की प्राप्ति के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, तो इसके पीछे हमारी मूल फीलिंग क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये आश्वासन मिलता है कि मेरा विस्तार हो रहा है, मेरा अस्तित्व को स्वीकृति मिल रही है, और ये जो स्वीकृति है ये हमें बड़ा रस देती है, बड़ा आनंद देती है, और इस स्वीकृति के लिए हम जीवन भर ये कार्य में करने में लगे रहते हैं। परंतु साधकों ने और विवेकी लोगों ने और गुरु लोगों ने विचार करके देखा कि ये प्राणी जिंदगी भर अपने अस्तित्व के विस्तार में लगा हुआ है, पुत्र के माध्यम से, धन के माध्यम से, यश के माध्यम से, ये और कुछ नहीं चाह रहा है, ये केवल इतना ही चाह रहा है कि इसके अस्तित्व का विस्तार हो जाए। परंतु ये ठीक रास्ते पर नहीं है, अस्तित्व के असली विस्तार को प्राप्त करने का एक पथ अलग है। इसको जो समझ में आ रहा है कि मेरे अस्तित्व का विस्तार हो रहा है वो एक सीमा तक ठीक है, परंतु टोटली परफेक्ट नहीं है। इसलिए गुरु लोगों ने एक विकल्प हमारे सामने उपस्थित किया। इस विकल्प में भी दो तीन सीढ़ियां हैं। जब हमें यह आसानी से समझ में आ जाए कि ये जो साधन है ये मेरे विस्तार के पूरे कारण नहीं है, तो उनका हम सदुपयोग करना पहले सीखें। उसका समष्टि के लिए कैसे प्रयोग किया जा सकता है, समष्टि के लिए हितकर कैसे बनाया जा सकता है, ये यदि हमारे योजनाओं से ऊपर उठना है तो ये प्रथम स्टेज है। हम सीधे सीधे छोड़ने के लिए हमारा मन तैयार नहीं होगा, छोड़ने की जितनी मजबूती हमारे मन में नहीं आएगी। पहला स्टेज ये होना चाहिए कि ये जो हमारे पुत्र है, ये जो हमारा वित्त है, ये जो हमारी नाम इच्छा है, इसको समष्टि के लिए उपयोगी कैसे बनाया जाए। इससे पहले हमारी दृष्टि होती है कि मेरे लिए इन चीजों को उपयोगी कैसे बनाया जाए, संतान को कैसे बनाया जाए कि मेरे काम आए, धन को कैसे जुगाड़ा जाए कि मेरे काम आए और नाम कैसे कमाया जाए कि मेरा नाम अमर हो जाए, फिर इसको ट्रांसफर करना पड़ता है और ये जो व्यष्टि की इच्छा है इसको समष्टि में परिवर्तित करना पड़ता है कि इन चीजों का समष्टि के लिए कैसे उपयोग हो सकता है। इससे समाज का कैसे उत्कर्ष किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में इन सब को ईश्वर के उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है, जिसको मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग करता हूं कि हमारा कर्म ही पूरी ईश्वर की पूजा बन जाए, हमारा जीवन ही ईश्वर की पूजा बन जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी ये जितनी सारी चीजें हैं, पुत्र है, वित्त है, हमारा नाम है, यहां तक कि हमारा अहंकार है, हमारा शरीर है, कैसे इस समष्टि के लिए उपयोगी बन जाए। कैसे हमारा जीवन एक खिले हुए पुष्प की तरह बन जाए। परिश्रम तो कोई करे, किसान करे, परंतु जब खिल जाता है तो आसपास का पूरा वातावरण सुगंध से सुगंधित हो जाता है, महक उठता है और जो भी उधर से निकलता है, वाह क्या खुशबू है, क्या सुगंध है। इसी प्रकार हमारा जीवन समष्टि के लिए कैसे ऐसा हितकारी और उपकारी बन जाए कि जो भी हमारे पास से निकले एक बार बोले वाह क्या जीवन है। जो संत हो गए, जो महापुरुष हो गए, वो कोई आकाश में उल्टा लटक लटक करके प्रसिद्ध नहीं हुए। ऐसा नहीं था कि वो ऐसे चलते थे तब 2-3-4 किलोमीटर ऊपर ही चलते थे इसलिए उनकी ऐसी प्रसिद्धि हो गई। वो भी हमारी तरह जमीन पे ही चलते थे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ खाते भी नहीं थे, कुछ पीते भी नहीं थे इसलिए उनकी ख्याति हो गई। वो भी शरीर की रक्षा करने के लिए हम लोगों जैसा ही खाते थे। रमण भी ऐसा ही जीते थे लगभग जैसा हम जी रहे हैं। शंकराचार्य जी भी धरती पे ही चलते थे, भोजन ही करते थे। उस स्तर में तो हम लोग जैसा जी रहे वैसा ही जी रहे थे। फिर भी उनके जीने का कोई आर्ट अलग थी, उनके जीने का कोई तरीका अलग था, उनकी जीवन दृष्टि कोई अमर अलग थी। वो पूरे समष्टि के साथ समरस हो गए, उनका जीवन पूरा समष्टि के लिए पोषक बन गया, उनका जीवन पूरा समष्टि के लिए उपकारी बन गया। और ये उपकार पवित्रता जाते 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 फिर उनके चेतना का, उनके चित्त का, उनके जीवन का इतना विस्तार हो गया कि कण कण में वो अपने स्वरूप का अनुभव करने लगे, अपनी आत्मा का अनुभव करने लगे, अद्वैत का अनुभव करने लगे। और एक सीमा ऐसी आ गई कि उनके स्वरूप से कुछ बार बचा ही। ये है भैया ट्रांसफॉर्मेशन, ये है ट्रांसफर। कैसे हम अपने शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, अपने गुणों को, अपने पदार्थों को पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हैं? मेरे कहने का मतलब ये मत समझना कि हम अपना धन बांट दे अथवा हम अपनी सारी चीजें दान कर दे, उससे कोई बड़ा समाधान होने वाला नहीं है। हमारे जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि हमारी एक एक श्वास निकले तो इस पूरे प्रकृति के साथ हार्मोनियस होकर के, पूरी प्रकृति के साथ सजग होकर के और पूरे प्रकृति के साथ एडजस्ट होकर के निकले। किसी का शोषण की भावना न हो, किसी के शोषण का चिंतन न हो, किसी के शोषण का विचार न हो, और हम जहां खड़े हो जाए वहां हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में, हमारे जीवन में ऐसी पवित्रता हो कि उस पवित्रता की गंध सुगंध चारों तरफ फैलने लग जाए। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो अपने आप को पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा से ऊपर उठाना है। पुत्रों का त्याग, वित्त का त्याग, अथवा एक कमरे में बढ़ करके बैठ जाना, मेरे को प्रशंसा चाहिए नहीं, मेरे को प्रशंसा चाहिए नहीं, ये तो लोकेष्णा त्याग का तरीका नहीं। और ऐसे परफेक्टली त्याग होता भी नहीं। त्याग का मतलब है होना और नहीं होना दोनों आपको अफेक्टेड नहीं कर रहा है। होना भी आपको प्रभावित नहीं कर रहा है और नहीं होना भी आपको प्रभावित नहीं कर रहा है, इसका नाम त्याग है। इसका नाम त्याग नहीं है कि आपके पास था और आपने फेंक दिया। आप हो सकते हैं एक बार आवेश में आकर के और कोई लोग आपको ऊपर चढ़ा दे, अरे क्या त्यागी है, क्या महापुरुष है, क्या त्याग है, तो फेंक सकते हैं एक बार, फिर जाके पछताएंगे, बड़े काम की चीज थी, लोगों ने ठग दिया, हमसे फेंका दिया। उसका नाम त्याग नहीं है। त्याग का मतलब है होना और नहीं होना दोनों हमारी चेतना को प्रभावित नहीं करे, तब समझ लेना कि इस वस्तु को हम अच्छी तरह से त्याग कर पाए। तो पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा के त्याग का मतलब है ये चीजें होते हुए भी हमारी चेतना को प्रभावित नहीं कर रही है और ना हो तो भी हमारी चेतना को प्रभावित हो गया त्याग। हो गए आप ट्रांसफर हो गए, आपकी बदली हो गई, आप एक दूसरी जगह पे चले गए। आपने घर बदला कि नहीं बदला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने शहर बदला कि नहीं बदला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने जॉब बदला कि नहीं बदला, उससे कोई फर्क, परंतु आप ट्रांसफर हो गए। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ऐसा त्याग का ये सच्चा अर्थ है। अरे 8:34 हो गया, अवेक्षित मोक्ष मार्ग ये तब और आगे कल ही चिंतन करेंगे। साधकों को ये कोशिश करनी चाहिए, हम सब साधकों को करनी चाहिए। हमारा जीवन इतना सेल्फ डिफेंड हो, हम इतने आत्मनिर्भर हो और इतने अंतर्मुखी हो कि बाहरी पदार्थों का होना और नहीं होना हमारे लिए बहुत अधिक महत्व न रखे। जब तक हम बाहरी पदार्थों के ऊपर निर्भर हैं और जब तक हमें यह अनुभव होगा कि ये पदार्थ मुझे पूरा कर सकते हैं, ये पदार्थ मेरे अस्तित्व का विस्तार कर सकते हैं, ये पदार्थ मुझे सुखी कर सकते हैं अथवा ये पदार्थ मुझे दुखी कर सकते हैं, ये दोनों फीलिंग तब तक है, तब तक हम साधना के बहुत गहरे स्तर तक पहुंचे हुए नहीं है। वेदांत की शिक्षा तो यही है, वेदांत की ट्रेनिंग तो यही है कि वस्तुओं का होना और न होना दोनों हमारी चेतनाओं को प्रभावित न करे। तो वेदांत का कोई गुरु आगे कहेगा कि शाबाश बेटा, तुमने ऐसा का त्याग किया। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं, हम सब साधकों के चित्त में इतनी मजबूती दे, इतना सामर्थ्य दे कि ये वस्तुओं का आना और जाना हमारे चित्त को प्रभावित ना करे, हमारी चेतना को प्रभावित ना करे और हम निश्चल मन से इस जीवन को एंजॉय कर पाए, जीवन की सच्चाई को समझ पाए। इसी पवित्र भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।